आज ललिताष्टमी है, ललिता सप्तमी है, कल राधाष्टमी होगी, उसके पहले 27 दिन बड़ी राधिका जी से ये ललिता जी का जन्म हुआ है। 27 दिन बड़ी है किंतु सप्तमी के दिन, और राधिका जी का अष्टमी के दिन। और उसी तरह से समझो राधिका जी कृष्ण का आविर्भाव हुआ भाद्र महीने के अष्टमी में, उसके वर्ष बीत जाने के बाद में फिर कृष्ण का जन्म का विभाव का दिन आया, और उसके 15 दिन बाद राधिका जी का जन्म हुआ। इसलिए राधिका जी कृष्ण से एक वर्ष और कितना दिन, 15 दिन बड़ी। यू शुड नो दैट भाद्र मास छोटी बड़ी नहीं, छोटी नहीं। इन भाद्र मास अष्टमी कृष्ण बर्थवास देयर, एंड आफ्टर दैट अगेन नेक्स्ट ईयर आफ्टर कृष्ण बर्थ डे 50 दिन बोर श्रीमती राधिका बर्थडे इज देयर। सो श्रीमती राधिका इज एज इज 1 year 15 days less than Krishna, because Krishna was too young at the age of 14. Krishna always किशोर, सब समय किशोर रहते हैं, उनकी उम्र 14 वर्ष की, और राधिका जी की उनसे कम 13.5 वर्ष या 12.5 नहीं 13 वर्ष के करीब उनकी उम्र है। कुछ लोग राधिका जी का उम्र बड़ा बतलाते हैं, किंतु यह भूल है। और ललिता जी राधिका जी से 27 दिन बड़ी हैं, इसलिए राधिका जी के प्रति उनका कंट्रोल रहता है। दैट इज वाई बाई हिज सर्विसेज, लविंग सर्विसेज, शी कैन कंट्रोल कृष्ण एंड राधिका बोथ, एस्पेशली राधिका। ललिता
जब आज ललिता सप्तमी है, सप्तमी है तो राधा जी से एक दिन बड़ी होनी चाहिए।
अभी हम लोग केवल नक्षत्रों की बात कर रहे हैं उसके अनुसार, किंतु 27 दिन पहले वो नक्षत्र था, उसमें ललिता जी का सप्तमी के दिन में जन्म हुआ, इसके बाद में राधा जी का जन्म। जैसे देखो प्रभुपाद जी का जन्म पंचमी को हुआ और गुरु जी का तृतीया को हुआ, तो गुरु जी बड़े हैं ना 3 दिन, किंतु ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी से बहुत छोटे हैं।
नक्षत्र नक्षत्रों के होते हुए भी जैसे राधा जी का नक्षत्र के हिसाब से अष्टमी को हुआ, ऐसे ललिता जी का सप्तमी को हुआ, उनका कल है तो इनका आज है, तो उनका आपसे एक ही दिन प्रतीत होती है ना ज्योतिष में।
हाँ इनको, किंतु ऐसी बात नहीं है, वो दूसरे। तो ललिता जी के पिता पहले करहैला नामक गांव में रहते थे, करहैला ग्राम, और जब कुछ ललिता जी बड़ी हुई तो उनके पिताजी ऊंचा गांव में आ गए, इसलिए दोनों जगह वहां पर भी उनका जन्म स्थल स्थली दिखाया जाता है। यहां पर उनकी क्रीड़ा भूमि है, ऊंचा गांव में क्रीड़ा भूमि, वहां पर अटोर पर्वत, अटोरा पर्वत है ऊपर, और उसी जगह ललिता जी को क्या पिताजी का घर वहीं पर माना जाता है। और हु विल ट्रांसलेट, एनीवन, यू, ओ ये कर सकते हैं, यू क्या आता नहीं आता है, क्या आता नहीं, आपको आप नोट कीजिए, और नहीं तो वो है कमल है, कमल तुम करेगा तो कर देना लिख। और ऊंचा गांव में सखीगिरी पर्वत है, देह कुंड है, वहां पर चित्र शिलाएं हैं जिसमें छोटी छोटी कटोरी जैसे बने हैं, वहां पर छोटी ललिता जी सखियों के साथ में खेलती थी, उसमें कृष्ण को भोग लगाती थी, और कोई कोई सौभाग्यवान लोग उस पर्वत के ऊपर में, सखीगिरी पर्वत के ऊपर में सखियों के चरण चिन्हों को भी देखते हैं, है किंतु अलक्षित रूप में रहती हैं, कोई कोई आदमी जा कर के समझ सकता है, किंतु हैं चरण चिन्ह भी वहाँ। वहीं पर एक पहाड़ी है जिसको अलता पहाड़ी कहते हैं, उस अलता पहाड़ी को फिसलनी शिला भी कहते हैं, सखियाँ उसमें फिसलती थी, और पासी में ललिता जी का विवाह का मंडप है। विवाह का मंडप माने क्या, जैसे राधा कृष्ण की गंधर्व विवाह हुआ था भांडीर वन में, ऐसे ही सखियाँ खेल रही थी, कृष्ण भी पहुँच गए, कृष्ण भी छोटे और ललिता भी छोटी और सखियाँ भी छोटी थी, उसमें बैठते ही सखियों ने ललिता जी का गठजोड़ कृष्ण के पीताम्बर से कर दिया, और विशाखा इत्यादि मधुर स्वर से विवाह का गान करने लग गई, और ललिता जी भागने की चेष्टा करने लगी तो देखा जो गठबंधन भाग नहीं सकी, तो इस तरह से गांधर्व विवाह हुआ, यथार्थ विवाह कृष्ण के साथ में नहीं, जैसे राधिका जी का नहीं हुआ वैसी तरह से इनका विवाह हुआ था जावट में। जितनी राधिका जी की सहेलियां हैं अधिकांश की शादी, यहाँ तक कि अनंग मंजरी की भी शादी वहीं पर, वो क्या नाम उसका, जावट में अभिमन्यु के भाई, उसका नाम था दुर्मद, दुर्मद के साथ में। और ललिता जी के पति का भी नाम है, मुझे याद नहीं है, नहीं नहीं वो था चंद्रावली का गोवर्धन मल्ल। तो इस तरह से ऊंचा गांव में सखीगिरी पर्वत पर उनका गांधर्व विवाह परस्पर हुआ, और राधा जी की से 27 दिन बड़ी होने पर भी इतना राधा जी के प्रति प्रेम था, दोनों में संभाव था राधा और कृष्ण में, किंतु राधा जी के तरफ में कुछ झुका हुआ था इनका। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचन उपकरणी कृत देह लखम उतुंग सौहृद विशेष प्रसाद प्रगल्भम देवी गुणीसु ललितांग ललितांग। Oh, first you should translate. You should come here.
ज्ञान के मेरे मुख से ज्ञान अक्षरों मेरे बढ़ोगे मनसा कर सकोगे सबसे पतिता नाम पावन है जो वैष्णव है जो नमो श्री महाराज जी दिस पहले समथिंग ही हैज ऑलरेडी टोल्ड इन इंग्लिश सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दोस क्वेश्चन विच ही हैज टोल्ड इन हिंदी ही इज सेइंग दैट ललिता जी वाज बोर्न इन अ डिफरेंट प्लेस एंड लेटर ऑन her father brought her to Uncha Gaon. So Uncha Gaon should be known as the place of activities, Krida Stali. There still till date, there are many evidences like the rocks where the footprints are available and there are small utensils on which Sri Lalita ji used to play with the other sakis and they used to feed Krishna when he used to visit them.
The glitter in sun rays. इसलिए चित्र शिला.
So when the sun rays fall on those pots and the places, it glitters, it shines. So all the sakis along with Krishna and Lalita ji used to play in Uncha Gaon, and still there are many spots where you can go and see the footprints still till this day. So on that hill, there is a slippery rock also, which is Mundi Maharaji said Prasaddi Shila, and there is a specific leela there, where there is a Vivaha Mandap. So Vivaha Mandap means the marriage place, arena, where there was a special kind of marriage arranged between Lalita ji and Krishna. But it should not be misunderstood as an actual marriage, it should be understood in the same way as we understand Srimati Radhika's marriage with Krishna, which is technically known as Gandharva Vivaha. Now, all this meeting took place when Sri Lalita ji was sitting there and Krishna was sitting beside her. So the sakis played mischievously and they tied Sri Lalita ji's Angavastra with Krishna's Pitambar. And when they didn't know, Vishakha ji started chanting the mantras for marriage ceremony. And when Lalita ji realized that something tricky is being played upon there, she tried to run away. But as soon as she tried to run away, because she was strongly tied with Krishna's Pitambar, she could not. So that way, all the sakis applauded her marriage with Krishna in that way. Then,
still वहाँ पर अभी भी रंग देखा जाता है उस पर उसी समय का है किंतु पानी डालने से नवीन हो जाता है.
A very unique instance is there, Maharaj is saying that even till this date, if you put water and some special preparations, the color, the mellow of that time, it shows the red color. You can actually see with your own eye that though it is such an old leela, maybe 5000 years ago, but still you can visualize it with your own eyes. So all these marriages, generally they have taken in Javad. And Maharaj is saying that I am not able to remember the name of Lalita ji's husband.
Raste se hat jao bhai, idhar aao. Oh, you should out. Don't stop the gate. Hey, aur uthar, uthar wo khan, kuch jao bodi gad. Wahan se chhod, nahi to log aadmi bhitar mein nahi aa pate. Ha, go on.
Though she was 27 days elder to Radha,
you should go. For, come on, come on here. Don't block the way.
Though she was 27 days elder to Radharani, still she used to have a sambha with her and she is generally known to have somehow towards both Radha and Krishna, but still Maharaj is saying she is inclined a little bit more towards Srimati Radhika. So she will continue from this point on.
Lalita Ashtak. के रूप गोस्वामी ना रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी का है सखियाँ चार प्रकार की होती हैं। स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहित पक्ष। जो राधा का पक्ष लेने वाली हैं वो स्वपक्ष कहलाती हैं, जो चंद्रावली का पक्ष लेती हैं राधा का विपक्ष में होती हैं उन्हें विपक्ष वाली कह लेते हैं, चंद्रा पद्मा शब्द आदि। और जो राधा जी के लिए तटस्थ हैं, राधा पक्ष के लिए तटस्थ हैं और उनके लिए सुहृद हैं चंद्रावली के लिए, जैसे भद्रा राधा जी के पक्ष के लिए तटस्थ हैं और चंद्रा इत्यादि के लिए उनके सुहृद हैं, और श्यामला जी राधा पक्ष के लिए सुहृद हैं उनके लिए तटस्थ। सुहृद का तात्पर्य क्या? ये राधा जी के पक्ष के लिए सुहृद वाली अर्थात श्यामला इत्यादि उनका अनिष्ट नहीं करती, इष्ट साधन करने की चेष्टा करती हैं, और जो तटस्थ होती है उसके बाधक इसका ठीक विपरीत होती है। तो इसे गलो न किया तो आर जाए ना न की सलामा के डाके नहीं तो अच्छा हो गया नहीं बुलाया। तो इसमें ललिता विशाखा इत्यादि जो हैं स्वपक्ष की हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के भेद हैं। और चंद्रावली जी विपक्ष की हैं, भद्रा जी राधिका जी की तटस्थ हैं और श्यामला जी राधिका जी की सुहृद पक्ष हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं ललिता जी का भाव कैसा है, ललिता जी का भाव कैसा है। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षण कुतुंग सौहृद विशेष प्रसाद प्रगल्भम देवी गुणई सुललितांग ललितांग नमामि। राधा कृष्ण की सेवा में उनको प्रसन्न करने में ललिता जी के करोड़ों करोड़ों जो परिश्रम है वो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम में जो पसीने की बूंद होती है पसीना की उसको पोछने के लिए कोटि कोटि बार यत्न करते हैं, निजुक्त हैं। मतलब क्या? सब क्षण सोते जागते उठते बैठते सब समय राधा माधव के चरणों की सेवा में नियुक्त रहती है। सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक मंजरी रूप से सेवा और दूसरी सखी इत्यादि के रूप। कभी कठोर शासन भी करती हैं और उस कठोर शासन को कृष्ण भी मान लेते हैं और राधिका जी भी मान लेते हैं। अत्यंत सौहृद रस्य, सौहृद माने सख्य भाव, सदा अवस्थ रहती। यू हैव नॉट डन ऑल यू रिटर्न बैक नाउ हुए दे आर दे टोल्ड दैट दे विल कॉल मी एंड दे विल सेंड कॉल,
देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कंप्लीट डिजास्टर,
नॉट गुड
jam completely.
और
दैट इज नहीं, सड़क तो उधर दरेसी में बन रही है, इधर अच्छा जो सदैव सुहृद रस से मैंने सख्य भाव से अबस रहती हैं, अबस माने क्या है, प्रेम में डूबी हुई रहती हैं, अद्भुत सुंदर अद्भुत माधुर्य गंभीर्य गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा, प्रगल्भ माने क्या, गांठ टपट करने वाली, शासन करने वाली, ऐसी ललिता देवी को मैं नमस्कार करता हूं। योग
Maharaji is talking about it is Lalita Ashtar, Shri Lalita Ashtar, which has been composed by Shri Rupa Goswami Ji. Now in this, he is talking about the types of sakis. Mainly there are four types of sakis. One is Swapaksha, second is Vipaksha, third is Tatastha, and fourth is Suhrit. So he has explained the meanings of all these four types of sakis. Swapaksha means those who are favorably disposed towards Srimati Radhika. Vipaksha means those who are favorably disposed towards Sri Chandra Adhiji. Tatastha means those who are normal towards Srimati Radhika, but more disposed towards Srimati Chandravali, and Suhrid means those who are favorably disposed more towards Srimati Radhika and they are Tatastha towards Chandravali. So he gave some names also in that Suhrid means those who do not do anything unfavorable towards Srimati Radhika. So Paksha examples are Lalita Ji and Vishakha Ji. And still in their categorization there are many many more finer points to be understood. So Chandravali is Vipaksha, Bhadra is Tatastha towards Srimati Radhika, and Shyamala is Suhrid towards Srimati Radhika. The bhavas of Lalita, now Maharaji is describing, she is always trying to be favorable towards the pastimes of Radha and Krishna, and she always tries to please them. In that, she does millions and millions types of endeavors, and her goal is to please them so much, to serve the droplets of their activities. The Radha and Krishna, when they are meeting and they are engaging in Madhurya pastime, so the droplets of perspiration they get from. So that generally means that Sri Lalita Ji is day and night engaged in the service of Shri Radha Krishna's amorous pastimes. And there are two types of services Maharaji is talking about. One is in the mood of Shri Manjari's, and the second is in the mood of Sakhi's. So Lalita Ji always serves in the mood of Sakhi's. Then her qualities Maharaji is describing. She has some kator mentality. Now kator means like she can command both Radha and Krishna, but she is also at the same time very friendly disposed towards both of them. She is always immersed in the ocean of love, and she is very beautiful, very madhuryamai, but at the same time she is very sober also, very composed. Her heart is so sweet that she attracts the hearts of all others, but at the same time she is pragalbha. Pragalbha means that she can talk harsh words at the same time, so she can control both Radha and Krishna.
(Clears भ्राता सुधा किरण मंडल कांति दंडे भक्ता स्वयं चा चकित चारु चमूर नेत्रं राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धं देवीं गुणं सुललितं ललितं नमामि। राधा जी बड़ी सुंदरी हैं, कोटि कोटि चंद्र की किरणों की कांति को भी तिरस्कार करने वाली हैं। जिनके नेत्र हिरणी के चलचल नेत्रों की भांति अति चंचल है। श्रीमती राधिका की बेश रचना की कला में असाधारण निपुण हैं, इसलिए वो सुप्रसिद्ध हैं। राधा जी की बेश रचना अधिकांश अष्ट सखियां करती हैं, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी। उसमें भी ललिता विशाखा विशेष और उनमें भी ललिता, उसमें गोविंद लीलामृत में इसका विशेष वर्णन है। किस लिए वर्णन दिया? जो सखी भाव चाहते हैं वो इन सब कलाओं में पारंगत इसी अभ्यास में रहेंगे, साधन अवस्था में ही, इसलिए ये सब दिया है। कृपा करके उन्होंने दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में पेश रचना करते समय कहती हैं खूब सजा रही और कहते हैं तू कृष्ण को डसेगी, जरूर डसना। राधा जी को याद दिला रही, जब आंखों में काजल देती हैं तो इसका उदाहरण दिया है कि ये काजल इस रूप में कृष्ण को वशीभूत कर लेती है। काजल मुझे पूरा याद नहीं, गीत गोविंद में कम आया है, उन सब में अधिक आया। तिलक जब रचना करती हैं तो कृष्ण को वशीभूत करने वाला उसका वर्णन करती है, कामजंत्र और कामजंत्र कहती हैं। और राधिका जी को स्मरण दिलाती हैं पूर्व लीलाओं की, ये किसी समय तुम अपने नेत्र में अंजन कराए बिना चली गई तो कृष्ण ने किस प्रकार से अंजन किया था, इस सब का स्मरण दिलाती हैं। इस प्रकार स्त्रियोचित अशेष गुणों की खान श्री ललिता जी को सब जो सर्वगुणमयी हैं उनको नमस्कार करता हूँ। लस्योल्लसत भुजगत शत्रुपतेत्र चित्र पटांशुकाभरण कांचुलितांगियां गोरोचनारुचि विगरहण गौरीमानं देवीं गुणैः सुललितं ललितां नमामि। लस्योल्लसत भुजगत पत शत्रुपतेत्र चित्र, जिस प्रकार से उद्धत मयूर अपने पंखों को फैलाकर विचित्र चित्र रूप में नृत्य करता है, जैसे सुंदर रंगीन वस्त्र पहना हुआ है और हार इत्यादि से विभूषित है, वैसे ही ललिता जी के श्रीअंग, उनकी साड़ी कैसी है जैसे मयूर पंख होता है, ऐसे विचित्र चित्र तरह के रंग उनके साड़ियों में है, हार इत्यादि पट्ट वस्त्र हैं और विचित्र रत्न आभूषणों से कंचुकी से जिनका श्री अंग अत्यंत विभूषित है, तथा जो अपनी गौर कांति से गुरुचना गुरुचना गौओं के खुर में स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ने से वो पीला होता। कैसा पीला? जैसे कच्ची हल्दी को तोड़ने से होता है ऐसा, ऐसे गुरुचना भी होता है, बहुत महंगा होता है। तो गुरुचने की कांति को भी सोने से भी अधिक उसकी सुंदरता होती है, उसके कांति को भी पराभूत करने वाली हैं उस असीम गुणवती ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। यू कैन
हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा शिष्य है और ये बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहा है,
बोलो। He has further taken two more shlokas of the same ashtaka. The shloka begins with the beauty description of Srimati Radhika. She is so beautiful that in front of the shloka further describes the beauty of Srimati Lalita. She has been described as so beautiful that her beauty surpasses the combined beauty of crores and crores of moons, and her eyes have been described to be so chanchala, so restless, that they can defeat the restlessness of the eyes of a stag, hirani, deer, female deer. And her specific quality has been described that she is very profound in doing makeup, especially the hair makeup of Srimati Radhika. Though all the eight Asht Sakhis are famous, they have been given the duty of doing makeup, the bodily decoration of Srimati Radhika. But especially among all the eight, Lalita Ji and Vishakha Ji are more profound in doing makeup. And even among these four, Lalita Ji is considered more proficient in doing makeups of Srimati Radhika. These leelas have been described in granthas like Govinda Leelamrit and also in the grantha named Krishna Bhavanamrit written by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. And Maharaji is giving us a hint, special hint, that those who want to serve Radha and Krishna in the Sakhi mood, they should try to take help of these granthas seriously, where they can find these kind of incenses so that the sadhakas can try to practice all these activities in their sadhak avastha also. Now, these sakhis keep on instigating Srimati Radhika that when you go to meet Krishna, how you have to behave with him. They want her to sting Krishna. So in Hindi the word is dasna, like when the snake stings, bites a person. So that way Srimati Radhika is being encouraged to bite Krishna when she goes to meet him. And when they apply kajal, the black powder, when that is smeared in Radhika's eyes, at that time also Radhika Ji is reminded that when Radhika Ji went to meet Krishna one time and she forgot to put kajal in her eyes, then how Krishna applied anjan in her eyes. So these leelas, they are brought to the notice of Srimati Radhika at the time of her makeup, so that Radhika Ji comes in the mood wherein she can please Krishna more by being different, taking shelter of different kinds of activities. Even in this particular leela of
Tilak,
the mark of the forehead, that way also they recite the Kama Yantra, which further inspires Srimati Radhika. So all these leelas are arranged by Srimati Lalita Ji especially, and so that is why she has been described as a fountainhead of all these different kinds of qualities. Then in the next verse, there is a simile being given of a peacock. When the Savan Mahina comes, the month of rains comes, So the peacock becomes very happy, and the peacock has been specially gifted by God that she has that he has very beautiful colors on his feathers. So he expresses his happiness by seeing the clouds by
spreading
his wings. So in the same way, Srimati Lalita's dresses are so beautifully ornamented and colored that they give an expression that there is a peacock which is, you know, expressing his willingness by and happiness by spreading his wings. So her colors of the sarees, especially she wears different kinds of necklaces, and all the ornaments she wears, they glitter her so much. And when all these glitterings are combined with the glittering of her own body, so this gives a very profound impression. And there is a particular mention in our Upanishads, this instance is called Gorachana. When in the specific constellation Nakshatra, there is Swati Nakshatra, the water of that Swati Nakshatra, the moisture, when it falls in the groves of the cows, so when it falls in that place of the cow's feet, it turns jisko Hindi mein khur kehte hain, so it becomes a very different kind of yellow color. So this yellow color can be understood like haldi when we use turmeric in our homes. So you can understand it like that, but that is a very special yellow color which defeats even the shine of gold. So this is what Maharaji is saying, it is considered very costly also. So that is the impression when Srimati Lalita ji gives, when she is serving Radha ji along with all her paraphernalia, her sari, her beauty and everything.
Hello.
कोता
थी के
कोतवाली आगे पार में है
कोतवाली
सर और आज पे मैं कीर्तन कर रहा जना माइक नहीं है जे फिर दिए थे हां ये रहा चले आप देख ले हमारे माइक का नया आज जैसे माइक फिक्स कर ला और कीर्तन कीर्तन कर और मेरा माइक नहीं है जे
माइक एक टाइम छिलो और आमा के डाके नहीं तो ওরা তো আসে নাই যা ভালো হয়েছে ভালো আছে না একটা এখানে অত লোক এসেছে ভালো
ধোতে বজন দতনে তনু সুস্থ বাম্যম মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিলি রাঘবায় রাধে শিগিরিং শৃণু हितामिति शिक्षयन्तिं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि
धोते ब्रजेन्द्रतने इतना राधा जी के प्रेम के ऊपर में इनका इतना कंट्रोल है इतना ललिता जी का प्रेम है कि कभी कभी राधिका जी को मान करने के लिए डांटती है। क्यों डांटती है? राधिका यदि मान रखती तो नहीं डांटती। तात्पर्य यह है, राधिका जी का यह कहना है हमारा मान तभी तक रहता है कि जब तक वो दूर रहते हैं, और जब हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं तो हमारा मान गल जाता है, किसी तरह से अपना मान में नहीं रख सकते। तो उनका मान शिथिल हो जाता है, कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाती हैं। उस समय आंखों से इशारा करके, अंगुली से ऐसे करके और राधा जी को डांटती हैं, खबरदार ऐसा करना। धुरते ब्रजेंद्र तने, ब्रजेंद्र तने नंद नंदन बहुत ही धूर्त है, कपटी है, काला है। देखो तुमको छोड़ करके अभी कहाँ चला गया था और अब आ करके तुम्हारे पैरों में सिर नवा रहा, झुका रहा और कहता है कि मैं कभी भी अब ऐसा अपराध नहीं करूं। इसलिए मम शिरसि मंडनम पल्लवम उदार कहते हैं कुछ। उस समय राधिका जी मन छोड़ देना चाहती है, उसी समय में कहते खबरदार यदि तुमने मान शिथिल किया। ये वाम्य भाव वाली और दाक्षिण्य भाव वाली दो प्रकार की सखियां होती हैं। इनमें चंद्रावली और उसके गण ये सब दाक्षिण्य भाव वाली है, घृत स्नेह की भांति। और राधिका जी और इनकी सखियां मधु स्नेह वाली जरा वाम्य स्वभाव वाली हैं। वामता को पति को या उपपति को या कृष्ण को वशीभूत कर सकती है, दाक्षिण्य भाव नहीं। किंतु चंद्रावली जी का ये विचार है ऐसे ब्रजेंद्र नंदन उनके प्रति मान रखती है, इसको धिक्कार है। और ये कहती हैं राधा जी और इनके ललिता विशाखा जी कहती हैं कि चंद्रावली को धिक्कार है जो उसको भाम्य बनाने आया, वो कृष्ण के ऊपर में अंकुश लगा करके उसको सेवा नहीं कर सकता। और उनका विचार है ये सेवा नहीं कर सकती, उनको चोर ठग क्या क्या कहती हैं और मान करती हैं, कृष्ण मनाने पर भी वो मान नहीं छोड़ती हैं। कहती हैं कि ये क्यों ऐसा करती है, उसके समझ में नहीं आती। तो वही कह रही हैं मां दक्षिणा भव कलंकी लीला भव, गली गली में तुम्हें कलंकी नहीं कहा जाता है और फिर भी तुमको ये नहीं है। वो जटला कुटला इत्यादि तुम्हें कितनी बार कलंक नहीं कह करके इधर उधर करती और फिर भी तुम्हें होश नहीं आता, इसलिए मान रखो। राधे गिड़ सुनम हितामिति शिक्षक है, किसमें राधा जी का हित होगा किसमें अहित होगा, इसलिए अहित न हो हित ही हो, इसलिए शिक्षा देवी जो देती हैं ऐसे ललिता जी समस्त गुणों की जो खान है ऐसे ललिता जी को मैं नमस्कार करता हूं। राधा मवि बजपते कृतयात्मजेन कूटम मना कपि विलोक्य विलोहिताक्षिं बाह्मण्य भी समचिरेण विलज्जयन्ति देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा मधुपते बजपते कृत आत्मजेन, यदि कभी नंदनंदन ने कृष्ण ने तनिक भी थोड़ी भी छल चतुराई देखी और उनकी बातों को सुना, कैसे जब निशांत लीला में कृष्ण समय बीतने पर राधिका जी के पास आते हैं और कुछ चिन्ह लेकर के आते हैं और कहते हैं मैं तो कहीं नहीं गया, झूठ बोलते हैं। तब कहती हैं हे नील लोहित रुद्र, आप उनकी उपासना करें जहां पर कर रहे थे, यहां आने की आपकी कोई जरूरत नहीं। तो इन चतुराइयों की बातों को सुनकर ललिता जी क्रोधित हो जाती है। क्रोध कैसा क्रोध, जिसमें विष नहीं है ऐसा क्रोध। और वो कहती हैं कृष्ण को, मैं वचनों की मार मारती हैं, अब ओहो कितने आप सरल हैं, कितने सत्यवादी हैं, आ कितने विशुद्ध प्रणयी हैं, आपको धिक्कार है। इस प्रकार कठोर वचनों से उनको शासन करती हैं, वचन भंगी के द्वारा कृष्ण को लज्जित करती हैं। ओ उन्हीं में आया है ओ कृष्ण भावनामृत इत्यादि में राधिका सहेलियों जी के सहेलियों के साथ में पुष्प चयन कर रही हैं और कृष्ण आए बोले जैसे हमारे बगीचे में कौन आकर के रोज फूल तोड़ता है, बगीचों को ध्वंस कर रहा है। उस समय ललिता जी ही कहती हैं ओ तुम तो बड़े रक्षक हो, लाखों गायों और लाखों सखाओं के साथ में वन को रौंद करके उसको सबको नष्ट कर रहे हो, आज तक एक भी पौधे को लगाया है या एक भी पौधे में पानी सींचा है बतलाओ तो। हम लोग सींचती हैं, हम लोग पौधे लगाती हैं, हम गायों के खूर से सबको रौंदवा करके जम वन को वृंदावन को नष्ट नहीं करती हैं। इस तरह से धमकाती हैं और भी कहते हैं ओ तुम जानती नहीं हो जो मैं कौन हूँ। ललिता जी कहती हैं खूब जानती हैं, आपको कौन नहीं जानता, ऐसे परमात्मा धर्मात्मा कि बचपन में ही पूतना नामक एक स्त्री को मार डाला और ऐसा कोई घर ब्रज में नहीं जिसके घर में चोरी नहीं की। और कितने धर्मात्मा छोटी छोटी गोपियों के वस्त्र को चोरी करके उलंग उनको करके पड़ पड़े चोर करके हंस रहे हैं, कैसे परम धर्मात्मा और लाखों लाखों गोपियों को लेकर के और राष्ट्र करते हैं, वाह कितने धर्मात्मा। इस तरह से वचन भंगी से कृष्ण को जो लज्जित करती हैं, सब गुणों की खान परम मनोहर श्री ललिता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वात्सल्य वृंद बसतिम पशुपाल राज्ञा सख्यानुशिक्षण कला सुगुरुं सखीना राधा वदा वरद जीवित मे विशेषान देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि, देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। ओ गोप नंद गोप राज की महिषी श्रीमती यशोदा देवी के वात्सल्य रस की निवास भूमि, जब राधिका जी के साथ में ललिता इत्यादि जब आती हैं नंद भवन में वात्सल्य की मूर्ति, जैसे कृष्ण को यशोदा जी आइए बैठिए इधर आती हैं वात्सल्य स्नेह से लालन पालन करती हैं, उसी प्रकार से राधिका को कम नहीं और राधिका के संबंध के कारण ललिता विशाखा इत्यादि को भी गले से लगा करके उनको आशीर्वाद देती हैं। और ये ललिता इत्यादि सखियाँ राधा जी की रसोई बनाने में सब प्रकार से सहायता करती हैं, समस्त विद्याओं में पारंगत कलाओं में पारंगत ये सखियाँ, तुंग विद्या जी सांप बिच्छू पशु पक्षी की बोली को जानती हैं, उनकी बोली समझती हैं, उनसे बात कर सकती हैं, ऐसी ऐसी सब सखियाँ हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा है सब गणों से अधिक श्रेष्ठ ललिता जी का गण है, उस ललिता जी के गण में विशाखा जी के अनुगत में रूप मंजरी की सेवा में राधा कृष्ण की सेवा कर, ये सबसे बड़ी कामना होनी चाहिए। इसलिए यशोदा जी वात्सल्य रस की निवास भूमि है, यदि वात्सल्य न रहे तो माधुर्य रस की विशिष्टता नहीं रहेगी, इसलिए सभी रोग रस माधुर्य रस में हैं और उसकी पोषकता भी करते हैं। जिसमें शक्कर रस कुछ विरोधी भी है, कुछ कुछ जहां सखा लोग रहेंगे वहां पर सखियां नहीं रहेंगी, किंतु जहां यशोदा जी रहती हैं रसोई बहाने इत्यादि के लिए ये सखियां वहां पर रह सकती हैं। तो सारी सखियों को सख विषय शिक्षा देने वाली गुरु हैं। राधा जी के जितने भी सखियां हैं उनको शिक्षा देने वाली कौन है? ये ललिता जी हैं, तथा राधिका जी एंड दाऊ जी के छोटे भैया कृष्ण कन्हैया जिनके प्राण स्वरूप हैं ललिता जी के। ऐसे निखिल गुणों के से संपन्न परम मनोहरी श्री ललिता देवी को प्रणाम करें।
So, Srimati Radhika is controlled by the extreme prema of Lalita. So, at the time when Radharani is with Lalita Sakhi, Lalita Sakhi even can chastise Srimati Radhika. When Krishna comes, you should remain very unsubmissive and do mom towards Krishna. Sometimes Radhika says, what can I do? As soon as I see Krishna in the distance, my anger goes, I cannot keep it. That time, Srimati Lalita Devi, with her finger raised, she chastised Radhika. Don't give up your unsubmissive mood. You should chastise Krishna. Krishna has many bad qualities. He is kapati, crooked, durta, unchaste. When he has many chitta, he comes, especially in the Santa Lila, he comes, that time where he's coming from, all night Srimati Radhika is waiting, but he comes early in the morning, and what he'll do? He'll come, he'll catch your feet, he'll beg forgiveness, but you should not become submissive, you should chastise him. Therefore there are two, Sakis have two types of moods. One is Dakshin Bhav, one is Bandi Bhav. The Dakshin Bhav or Rider's mood, that is called Krita Sneha or of Chandravali's group. Krita Sneha means I can say, I am Krishna. And Bandi Bhav is Madhu Sneha of the group of Srimati Radhika. Only the Bandi Bhav can completely control the husband, the Upapati, the beloved, or Krishna. Therefore the two groups cannot very much understand one another. Chandravali, she criticizes Srimati Radhika and her group. Who can do man towards Krishna? He's so sweet and lovely. But Srimati Radhika and her group, they're thinking, how Chandravali can become so submissive to Krishna? Therefore, Srimati Radhika said, you should apply the ankush, like to control an elephant, to have one weapon. Why Chandravali is not controlling Krishna like that? Then how she can do seva to Krishna? Therefore, both groups cannot understand each other's love. Therefore, Srimati Lalita Devi, she is the Shiksha Guru of Krishna, of Srimati Radhika even. Therefore, Rupa Goswami says that Srimati Lalita Devi, even she chastises Radhika. Kalinkini, don't become unchaste one, don't give up and become submissive to Krishna. Therefore, Sri Rupapada says I do pranam again and again to that Sri Lalita Devi. If Krishna comes towards Srimati Radhika and uses some clever words, then Srimati Radhika cannot tolerate. Like in the Santa Lila, Srimati Radhika is waiting all night, but Krishna has not come. Then very early in the morning he comes with some marks, some signs of being with some other gopi. That time Lalita says, oh, Nirohit Rudra, don't need to come here, we won't do your seva. Why? Where is your Bhavani? Where is your wife? You should go to her. Because Krishna is not sleeping, his eyes are very red, some other symptoms are there. Therefore, Lalita will chastise Krishna like that. She will say, yes, yes, I know Krishna. You are very simple, very chaste, and very honest. And by her very sharp and harsh words, She causes shyness to Krishna as she makes Krishna ashamed. All this is described in Sri Krishna Bhavanamrita. How Krishna says to the gopis, why you come here? I said, don't you know I am Brajendra, the Indra of Vrindavan? You are destroying my Vrindavan. That time Srimati Lalita Devi says, yes, we know what type of Rakshikwala, what type of protector you are. Because you have never planted even one seed, you have never watered one tree. And with your hundreds of thousands of cows, you are destroying this Vrindavan. But we are the real owners of Vrindavan. We have planted every seed, we have watered every tree. And Krishna says, don't you know who I am? I'm a very religious person. I never tell a lie. Then Srimati Lalita Devi says, yes, we know what type of Dharamatma, what type of religious person you are. We heard when you were only 7 days, you killed, 6 days, you killed a woman who came as your own mother, Putana. Then what house is there in Vrindavan from which you have not stolen from? Are you the same religious person who stole the clothes of all the gopis? Are you the same religious person who has done Rasleela with all the other gopis of Vrindavan? Are you the same Dharamatma? Then Krishna becomes ashamed. When Srimati Radhika goes to Nanda Bhavan with Lalita and the Astasakis, that time Srimati Yasoda Devi gives so much Vatsalya prem, Vatsalya bhav towards Srimati Radhika. Not less than the same Vatsalya mood she has to Krishna. And Srimati Yasoda Devi gives the same affection to all the other Sakis and Manjaris because of their relation with Srimati Radhika. Therefore, all the Astasakis have so many qualities. Therefore, Rupa Goswami said, of all the gopis, the Astasakis are the topmost. For example, Sri Tungavita Devi. She can talk with all types of birds and animals. She understands their language and can communicate with them also. Therefore, what can be greater than this? Under the guidance of Lalita and Vishakha, performing service to Srimati Radhika, what is higher than this? Without the presence of Vatsalya Ras.
Oh, get ko chodo. Get Savita Rajao. Oh, you should come.
Don't sit there.
Don't. Or you want to come? You can come here. So many, so much.
Don't lock the door. Move here. Huh. People come in and out.
You should come in here. So many places. So much. Huh.
Therefore, without the presence of Vatsalya Ras, the glories of Madhuri Ras are not manifested. For example, when the Sakas are present with Krishna and Radhika and the gopis, some obstacle is there in meeting. But in Vatsalya Ras, not so much obstacle is there. For example, when Srimati Radhika goes to cook in Nandagaon with all the Sakis, and Srimati Yasoda is there, but there is no disturbance there. So Vishakha and Lalita Devi are the Shichigurus of all the gopis in the group of Radhika. Therefore, Lalita Devi, her pran, sarup, her life and soul is Krishna and Radhika. Therefore, I do pranam again and again to Srimati
Lalita Devi. Jatam api brajakule vrishabhanujaya prekchat svapakcha padavim manurubhyamanam sadhastadishta ghatanena kritatavanti delingunaisu lalitam lalitam namani delingunaisu lalitam ललिता नमामि। ललिता जी का सबसे अधिक गुण, ये गुण हमको पसंद होता है। हम लोगों के लिए, साधकों के लिए ललिता जी ही सबसे अधिक है। वो राधा कृष्ण की, विशेष करके राधा जी की सेवा में नियुक्त कर सकती हैं। जा काम पे बज कुले विषभान जाया प्रेक्षस पक्ष पदविम अनुरुद्धमाना। ब्रज में कहीं भी कोई युवती को देखकर, कोई गोपी को देखकर अपनी प्रिय सखी राधिका के स्वपक्ष में सेवा करने की यदि गंध भी देख लेती हैं, जो कोई ये चाहती हैं कि मैं राधा जी की सेवा करूं, तो ललिता जी जान करके, देख करके, गंध जान लेने पर भी उसी समय उसकी सारी आकांक्षाओं को पूर्ण कर उसे कृतार्थ कर देती हैं, अर्थात राधिका जी की स्वपक्ष की सेवा प्रदान करते हैं। इससे हम लोगों को अधिक क्या चाहिए? तो हम लोग जितने हैं, यदि इनमें से कोई चाहने वाला एकांतिक रूप से हो, जो ललिता जी के गण में, विशाखा जी के अनुगत्य में और रूपमंजरी के हम राधा जी की सेवा कर सकें, तो राधा जी की ये सेवा किसी को भी वो दे सकते। इसलिए बस ये जानने की जरूरत है, बस ये सब ब्रज की सेवाओं को पाने के लिए ही उपाय। एक ये ललिता जी, दूसरे हैं गिरिराज जी और तीसरी हैं कालिंदी जी, यमुना जी, ये तीन हैं। उनमें सबसे तीनों में श्रेष्ठ मुझे यही मालूम होता है ललिता जी की कृपा होने से।
कालिंदी तो विशाखा का ही रूप है, विशाखा का ही रूप है ना कालिंदी जी।
हाँ, कीर्तन की श्री राधा कृष्ण पद कमले मन शरण। हाँ अच्छा, और एक और श्लोक, राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग चर्याम वर्जं विनिश्चितवती निखिलोत्सवेभ्य तांगोकुल प्रिय सखी निकुरंबमख्यां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि, देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा और गोविंद को परस्पर मिलाना ही जिनका कार्य है, उनका मनो विनोद करती हैं दोनों को मिलाकर। राधा जी का तनिक भी कष्ट नहीं देख सकती, तो उनका ये अभीष्ट कार्य है किस प्रकार से राधा और गोविंद को मिलाना। यद्यपि वे सखी हैं, सखी माने ललिता जी राधा जी की सखी है बराबर की, उनको जूथेश्वरी भी कह सकते हैं, जूथेश्वरी होने का सब गुण है। यदि भद्रा जूथेश्वरी हो सकती हैं, यदि श्यामला जूथेश्वरी हो सकती हैं, यदि चंद्रा इत्यादि जूथेश्वरी हो सकती हैं, तो ये क्या है, समस्त गोपियों की जूथेश्वरी ये हैं। गुण होते हुए भी सखी नहीं, उनकी सेवा करने वाली अपने को समझती है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है, पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नन्यत् कपदापि समये किल देव याचे, सखायते मम नमस्तो नमोस्तम दूर से और दास्यायते मम रसोस्तु। यदि कृष्ण द्वारका चले जाएं, कोई भी बात नहीं, राधा जी जहाँ रहेंगी हम उनकी सेवा करेंगे, और राधा जी भी किसी प्रकार से चले जाएं तो मन की बेग से वहाँ उड़ करके जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, ऐसी शक्तियों की भावना होती है। तो उनको सखित्व के लिए प्रणाम है, दासित्व के लिए मनोवासना है, ललिता जी उसको पूर्ण करने वाली है। नंदन नमो न ललिता गुण लालिता पद्यानि जा पठति निर्मल दृष्टि रस्तो प्रीत्या विकर्षित जनम निज बृंद मध्ये संकृत कीर्तिदापति कुलोज्वल कल्प बल्लिन। जो व्यक्ति प्रेम से भरकर हृदय में आत होकर निर्मल अंतकरण से ललिता के ललित गुणों का वर्णन करता है, पाठ करता है, कृतिका देवी के पति विश्वभानु महाराज और उनके कुल की उज्जवल कल्पलता सरित जो राधा जी हैं उनको प्रीति पूर्वक आकर्षण करने वाला ये स्तोत्र है। इसे ललिता जी प्रसन्न होंगी, राधा और कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, विशेष करके ललिता जी प्रसन्न होंगे। इसलिए ललिता जी को उनके जन्म तिथि में, आविर्भाव तिथि में उनको पुनः पुनः नमस्कार।
Srimati Kaliti Devi has unusual qualities, but which is the best quality of all? Especially, which is the best quality that is concerned with us, the sadhaks of this world? Her topmost quality is that if she sees in Vrindavan any gopi, anyone who has even the slight touch of the smell of a desire to serve Srimati Radhika, then the Lady Devi immediately fulfills the desire of that gopi and gives her the unlimited wealth of the service of the feet of Srimati Radhika. Therefore, if one has a one-pointed desire to perform the service of Srimati Radhika under the direct guidance of Srimati Lalita Devi and furthermore under the shelter of Sri Rupa Manjari, then Lalita Devi is the only method, the only medicine, the only path by which one can achieve this Radhadasya, the service of Radhika. There are three personalities who have the ability to give prema. The first, and Guru Maharaj says, the greatest is Sri Lalita Devi herself. The second is Sri Govardhan Giriraj Maharaj. And third is Kalindi or Vishakha Devi. But of all of them, Lalita Devi is the topmost. Therefore, even though Lalita Devi is a Sakhi, that means she's the same age as Radhika, or one day older. She also has all the qualities of being a Yukteswari, of being able to control her own group of subservient gopis. And why is she? And of course she's qualified to be a Yukteswari. If Bhadra, Shyamala, or Chandravali, if they can become Yukteswaris, one to speak of Srimati Lalita Devi. Despite being the same age and having the qualification to be a Sakhi, still the only goal of that life of Lalita Devi is to assist Srimati Radhika and to facilitate the meeting of Radha and Sri Radha and Krishna. Her only happiness is the meeting of Radha and Krishna, and she never considers any amount of discomfort or suffering in order to achieve that goal. Therefore, Sri Raghunath Das Goswami said, Kadadeo Kavavina Vadadasyeva Nanakadapisana Kiranashi. Oh, even I offer my pranam thousands and thousands of times to the position of being a Sakhi of Srimati Radhika, but really my only desire, birth after birth, is to attain the service of the Srimati Radhika in the mood of Manjari. I have no desire to become equal to Radhika like the Sakhis. Therefore, Sri Raghunath Goswami says, I delegate the feet of Radhika to go to Krishna. And even if Krishna goes to Dwarka, I will not go there. But if somehow Radhika desires and she, out of some madness, she flies to Dwarka, I will go there at the speed of the mind to serve her. Therefore, in conclusion, Srimati Radhika, Srimati Lalita Devi, she is the Kalpavriksh, she is the Krishna-filling tree of the prema seva of Sri Radha and Krishna. Whoever chants this aspect, Radha and Krishna will be happy, and moreover, Lalita Devi herself will be happy, and all our desires can be fulfilled.
Kal सवेरे में राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उनका जन्म रावल में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब में उनके पिताजी यमुना के घाट पर स्नान करने गए थे। अष्टदल कमल के ऊपर में वो छोटी सी बालिका नंगी सी मिली, अपने अंगूठे को मुख में चूसती और कभी कभी इतर से पैर इत्यादि करती थी। उन्होंने लिया, ले करके आए और अपनी पत्नी कृतिका जी के, कृतिका ने हाँ देवी के गोद में दे दिया। पिताजी का अधिक स्नेह होने के कारण उनको सब लोग विश्वभानु नंदिनी बासुभानवा भानु दुलारी इत्यादि कहते हैं। कृतका जी का भी कन्या के रूप में कि इनका अधिक है। और हम लोग सवेरे आरती के बाद में करीब करीब 6:30 बजे के करीब में 6:30 बजे कीर्तन के बाद में बैठेंगे और फिर उनका स्तव स्तुति करेंगे। इधर में अभिषेक की सारी तैयारी होगी, घी दूध दही बूरा चीनी इत्यादि सब कुछ मधु प्रस्तुत रखा जाएगा। इधर प्रवचन हम लोगों का थोड़ा सा हो जाएगा, पाठ थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद में करीब 7:30 के करीब में ऐसा ही ना 7:30 के करीब में अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में लोग 9 बजे के करीब में 9:30 बजे यहाँ से वन महाराज जी पार्टी लेकर के कौन जगह कैलाश नगर में जाएंगे। उनको सभी लोग बार बार हमको निवेदन किया है जो वो नहीं जाने से नहीं जमता, वो अपनी पार्टी लेकर के जाएं। और कुछ लोग कोयले गली में चले जाएंगे और कुछ लोग भगवान दास के अपना पार्टी सब ठीक कर लेना। तो पर तुम अपना पार्टी लेकर के इनके यहाँ जाना बोला लो। और रसानंद जी आ जाएंगे, ये चले जाएंगे सबको लेकर के भगवान दास के पार्टी में। और पार्टी अपना अपना सब ठीक कर फूल मृदंग और सब लोग जाना। फिर चाव आने के बाद में बधाई का कीर्तन होगा और सबको प्रसाद मिलेगा। ये कल का कार्यक्रम है। और यहाँ पर मथुरा की यदि श्यामला जी हैं तो हमसे 2 मिनट के लिए अभी जा कर के बात करेंगे। कुछ श्यामली श्यामला नहीं श्यामली मथुरा वाली उसकी ज़रूरत है। तो अभी ललिता जी के संबंध में अभी रसानंद ब्रह्मचारी कुछ बोलें।
So
कृष्णदास तो नहीं है सर, तो तुम्हें कीर्तन करते ललिता सखी अनुग्रह।